तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारुहे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम् हम लोगों का गुरु और सचिनंदन गौर हरि राधा कृष्ण के कृपा से भक्ति का प्रचार अच्छा ही चल रहा है। बहुत से लोग नए नए प्रश्नों को करते हैं। सनातन धर्म के संबंध में लोगों की कुछ धारणाएं हैं जिनको उन्होंने गलत तरीके से समझा है, उसके लिए वो लोग प्रश्न करते हैं और उत्तर पाकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ लोगों की धारणा थी कि भगवान निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं है, किंतु हम लोगों ने ये बतलाया जे भगवान का आकार है, कृष्ण ही उनका आकार है, बहुत सुंदर राम उनका आकार है, विष्णु उनके आकार है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक उसकी प्रतिष्ठा के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं, अपने रूप को लेकर के आते हैं, नया कोई रूप धारण करके नहीं आते, जैसा उनका रूप है उसी को लेकर के उतरते हैं, इसलिए इसका नाम अवतार है। बहुत से लोगों की यह धारणा थी कि हिंदू धर्म में केवल कितने देवता देवियों की उपासना होती है, एक उपासना नहीं। हम लोगों ने उसका भी उत्तर दिया, ये भगवान लोगों की धारणा के अनुसार उनको उन्नत बनाने के लिए बहुत से अवतार धारण करके भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए वे अलग अलग नहीं है, एक ही है। हमारे प्रभु विभिन्न रूपों में आ सकते हैं, खुदा और अल्लाह शायद उनका भी लिखा है उनके शास्त्रों में जो उनका आकार है, जैसे गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर ही ओन इमेज, अपने रूप के अनुसार उन्होंने मनुष्यों को बनाया। तो ये वेद उनमें लिखा कैसे बाइबल में जो गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर ही ओन इमेज, उन गॉड का एक रूप है उसके अनुसार मनुष्यों को बनाया इसलिए उनका आकार है, और यदि नहीं तो उनका पुत्र कैसे हो गए यीशु मसीह, जब बेटा बाप का ही रूप नहीं है तो बेटे का रूप कहां से आ गया, इसलिए भगवान का रूप है। और भी कुरान हदीस में भी ये लिखा गया इन्ना अल्लाह खलाका मिन सूरत ही, खुदा ताला ने अपने रूप के अनुसार में मनुष्यों को बनाया, यदि उनका रूप नहीं है तो अपने रूप के समान कैसे बनाया, ये तो वेदों की बात है। सत्य सम्य इदम अग्रासी भगवान का रूप था, वही रूप लेकर जगत में प्रकट किया। उन्होंने विश्व का सृजन किया, उन्होंने लाखों लाखों योनियों में ये जगत की सृष्टि की। यदि उनमें रूप की पोटेंसी नहीं है, गुण की पोटेंसी नहीं है, तो ये आया कहां से? जीरो से कोई चीज नहीं होता, फ्रॉम नथिंग एनीथिंग कैनॉट बी क्रिएटेड, समथिंग कैनॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड बाई होल थिंग, एंड दैट पूर्णा पूर्णमदः पूर्णम मद पूर्णम उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्ण, वो भगवान पूर्ण है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव माइनस एनी इन्फिनिटिव नंबर, एनी नंबर और इन्फिनिटिव इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, वो सब समय पूर्ण है, वो कभी शून्य नहीं है। इसलिए ऐसी कोई शास्त्र नहीं जिसमें भगवान के रूप की बात नहीं लिखी गई है। कभी कभी हम उनको देख नहीं पाते हैं, अभी रियलाइज नहीं कर पाते, इसलिए उनके लिए निराकार कह दिया। इसलिए इस सब के बातों में भी हमने बतलाया। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेद उपनिषद शास्त्र सबका सार, पुराणों का सार उसमें लेकर के भर दिया। निगम कल्प तरोर्गलितंग फलम सुख मुखादमृत दव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। वेद कल्प वृक्ष है, जो कोई कल्पना करेंगे यज्ञों के माध्यम से वो हो जाता है, मंत्रों के उच्चारण से ये हो जाता है, जो कुछ कल्पना करो जो कुछ चाहो वो भी हो जाएगा। और उसका ये पहला पका हुआ श्रीमद् भागवत सार फल है, जिसमें कि गुठली नहीं है न छिलका है, उसमें सभी उपादेय है, परम उपादेय है। इसलिए श्रीमद् भागवत को विश्व का सबसे श्रेष्ठ ये ग्रंथ कहा गया। गीता को क्या कहा गया? इन्फेंट्री बुक, पहली पुस्तक धर्मराज्य की गीता को। और भागवत को क्या बात लाया गया? PhD, D.Litt, सबसे उत्तम और ऊंचा क्लास का ये दार्शनिक और सुंदर फल श्रीमद् भागवत। इसलिए गीता से भी श्रीमद् भागवत का स्थान बहुत ऊंचा है। गीता में कुछ उपदेश दिए गए हैं, प्रारंभिक उपदेश दिए गए हैं, अंतिम उपदेश श्रीमद् भागवत में मिलेगा। अभी श्रीमद् भागवत से हम लोग कुछ बतला रहे हैं। परीक्षित महाराज जी राजा थे, बड़े शिक्षित थे, और वो जंगल से गुजर रहे थे, भूमंडल का विजय करके लौट रहे थे, और उनको प्यास लगी। एक ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने पानी मांगा, किंतु ऋषि तो समाधिस्थ थे, ऐसे बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। वो एकदम देख रहे थे भगवान की लीलाओं को समाधि में, उनको होश नहीं था, कौन पानी पिलाता? इसलिए पानी उन्होंने नहीं पिलाया क्योंकि होश में नहीं थे, भगवान का चिंतन में थे। साधारण लोग इस चीज को नहीं समझ सकते। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, चेयर पर बैठ जाइए, असुविधा से चेयर पर बैठ जाइए सामने। तो उन्होंने बतलाया, मैं देश का राजा और प्रजाओं का हित करता हूं, इसने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैंने पानी भी मांगा, तो ये क्या साधु होगा? साधारण तरह से लोग समझते हैं कि साधु खिलाता पिलाता है बस इतना ही, आत्मा का कल्याण करता है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं कैसे। अभी समय नहीं आता तो मैं बतलाता जी कैसे करते हैं उपकार। जो लोग विश्व में साइंटिस्ट लोग नहीं कर सकते, उसे अधिक ये लोग करते हैं जगत का उपकार। तो उन्होंने देखा जी इनको उपकार कुछ करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। क्या पुरस्कार दें? गले में हार देकर के इनका स्वागत करें। किस चीज का हार? मरे हुए सांप को अपने धनुष के उससे उठा लिया और उनके गले में 3 बार सांपों की माला पहुंच गई। जो लोग पानी नहीं पिला सकते हैं उनके लिए यही पुरस्कार है, साधु बने हुए ढोंगी है किंतु नहीं समझ सके। थोड़ी देर के बाद में यह बात खबर उनके बेटे को 5 वर्ष की उम्र थी उसको लगी। वो खेल रहा था पास ही में, उसको पता लगा कि किसी ने आकर के हमारे पिताजी के गले में सर्प डाल दिया है, इसलिए वो बहुत क्षुब्ध हुआ, नंगा बेचारा था। वहां पर जमुना, वहां गंगा का पानी लिया अपने हाथ में और लेकर के राजा को अभिसंपात किया। सातवें दिन तक्षक आकर के तुम्हें काटेगा, जहां भी जिस रूप में हो तू काटेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता है। और ये कह करके रोने लगा, पिताजी के गोद में बैठ करके रोने लगा। पिताजी का ध्यान खुला, अरे बेटा क्यों रो रहा है? तो वो जोर से रोता हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उन्होंने ध्यान लगाया, अरे ये तो गजब हो गया, महाराज परीक्षित ने हमारे गले में सांप डाल दिया था। बेचारे बड़े सीधे साधे हैं, बड़े धार्मिक हैं, प्यास से, भूख प्यास से छटपट कर रहे थे, इसलिए नहीं समझ सके और भूल से हमारे गले में सांप डाल दिया। और हमारे बेटे ने 5 वर्ष की उम्र अभी मंत्र कूद करके अभिसंपात कर दिए, छोड़ दिया, जो सातवें दिन तुमको ये सांप डसेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता। उस समय 5 वर्ष बालकों में भी ये मंत्र की शक्ति थी, अभी भी मंत्र की शक्ति है। जो लोग बड़े ब्रह्मचारी रूप में रहते हैं, बड़े नियम से रहते हैं, उनके मंत्र में अजीब बहुत शक्ति होती है। किसी को खबर दिया कि हम ये आदमी को सांप काट लिया, वो मर रहा है या मर रही है, बस टेलीफोन पर ही थप्पड़ ऐसे लगाया, मंत्र पढ़ करके बस उनका सांप का विष उतर जाता। अभी भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं, मंत्रविद हैं। हमने भी मंत्र का ये देखा है प्रभाव। एक हमारे चाचा जी थे, वो जादू से कहते मिठाई खाएगा, मिठाई पैसा लेगा, पैसा, हम लोग छोटे छोटे बच्चे, और हाथों से ऐसे कर देते नोट, 100, 200 साल के नोट एकदम झरझर झरझर गिरने लगते थे और मिठाइयां फुलझड़ी की भांति निकलने लगती थी। और जब उठा करके खाते थे देखता ये कुछ नहीं है। ऐसे मंत्र के प्रभाव हैं। सातवें दिन तुमको तक्षक डसेगा और कोई नहीं बचा सकेगा। ये जान करके ऋषि बच्चे पर बोले, तू ब्राह्मण का बेटा नहीं, हमारा बेटा नहीं? ब्राह्मण लोग सहिष्णु होते हैं, उनका अपमान करने पर भी बदला नहीं लेते, तुम्हें सहिष्णुता नहीं है, ब्राह्मणों को सहिष्णु होना चाहिए, और तुमने ये क्या कर डाला? अब चोरों से रक्षा कौन करेगा, स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? राजा यदि अच्छा नहीं होगा तो प्रजा स्वेच्छाचारी होकर के उदंड हो जाती है, स्त्रियां भी उदंड हो जाती हैं, पुरुष भी उदंड हो जाते हैं। तुमने बहुत खराब काम किया। उन्होंने अपना एक बटुआ ने विद्यार्थी उन्होंने भेज दिया, जाओ परीक्षित महाराज को खबर दे दो, वो अभी रास्ते में होंगे कहीं, या राजधानी में पहुंच गए होंगे, ये सातवें दिन वही तक्षक आएगा, काटेगा सांप, तुम जो कुछ करना है कर लो। वो विचार कर रहे थे कि हमने कहीं अन्याय तो नहीं किया, हमने किसी शुद्ध महात्मा के चरण में अपराध तो नहीं किया। यदि सचमुच में वो ढोंगी नहीं हुए और भगवान का चिंतन कर रहे थे तो हमने बहुत बड़ी भारी अपराध किया। प्रभु ही हमारी इस अपराध से रक्षा करे। अब तो मुझे उस सांप से जल करके मर जाना होगा, कहीं हमारा परमार्थ नष्ट न हो जाए। इतने में उसने खबर दी कि सातवें दिन तुम्हारा निधन होगा, सांप काटेगा, तुम जो कुछ करना है कर लो। बस वो राज्य में लौटे नहीं, अपना राजकीय वस्त्र और धनुष बाण सब रख दिए, गंगा के किनारे पहुंचे, खाना पीना छोड़ दिया और वहीं पर गंगा के किनारे उत्तर के तरफ में होकर के भगवान का चिंतन करने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। और इतने में बेतार का तार खबर हुआ भारतवर्ष के, जहां जहां हमारे ऋषि महर्षि थे, मिनटों में जाने कैसे उनको खबर लगी, 88,000 ऋषि वहां पर उपस्थित हो गए। उस समय इन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, हमारे 2 प्रश्न हैं, कृपया आप इनका उत्तर दें। पहला प्रश्न, जो कोई मरणासन्न अभी मर रहा हो, मरना निश्चित है अभी मर रहा हो, उसको क्या करना चाहिए, दूसरी बात, जो आज न कल न परसों मरेगा या वर्षों में मरेगा, 100 वर्ष में मरेगा, 1000 वर्ष में मरेगा, मरेगा जरूर जिसका जन्म हुआ है, उन लोगों को क्या करना कर्तव्य है? जो अभी मर रहा है तुरंत अभी, वो क्या करेगा? यदि बहुत बड़ा भारी बिजनेसमैन है, क्या करेगा? व्यवसाय की व्यवस्था सुव्यवस्था करेगा? अभी मर रहा है, हार्ट फेल होने जाने वाला है, या कोई ट्रक और इत्यादि का कार में धक्का लग गया और अभी अंतिम श्वास ले रहा है, उसको क्या करना चाहिए? व्यवसाय वाणिज्य देखेगा, ना दान पुण्य करेगा, ना भगवान का ध्यान लगाएगा, अगर न क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं कर सकेगा। उस समय में उसके कानों में राम राम कृष्ण कृष्ण सुनाओ, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। यदि सुना दिया, तुलसी हो तुलसी का पत्र उनको दे दो, गंगा जल है उनको दे दो, उनका कल्याण हो जाएगा। और किसी तरह से उनका लिए और कोई कर्तव्य नहीं, भगवान का नाम सुनाओ बस। यदि कर सकते हैं तो कराओ, और नहीं तो सुना दो कान में बस एक बार। इससे बढ़कर के और कोई डॉक्टर के यहां ले जाने की, अस्पताल में इमरजेंसी में ले जाने की जरूरत नहीं है। अब तो वो रास्ते में चलते चलते ही मर जाएंगे। उस समय डॉक्टर लोग पास नहीं किसी को आने देंगे, वो अकेले ही हाय हाय करते हुए क्या न जाने क्या क्या चढ़ाएंगे। उस समय में आपको फुर्सत नहीं रहेगी, आप जाकर के उनके कान में नाम सुनाइए या गंगा जल दीजिए, इस पर वो विश्वास नहीं करते। किंतु हम हिंदू सनातन धर्मी मंत्र के बल पर और इन चीजों को विश्वास करते हैं, इसलिए ये पक्की चीज है। उन्होंने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ये दिया, जो अभी तुरंत मरने वाले हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अय केवल कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यता। इन लोगों के लिए बस हरि नाम ही केवल मात्र गति है और कोई नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्मियों में जब कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य हुए कहते हैं और उसे ले जाते हैं और उसका संस्कार करते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं उनको और हरिनाम संकीर्तन कराते हैं। आज भी वो सब नियम है। और दूसरी बात, जो अभी मर नहीं रहे किंतु मरना है, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए करें कुछ भी, किंतु उनको भी क्या करना चाहिए? भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दर्शक सख्यात्म निवेदनं, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करें, ठाकुर जी की आराधना करें, उनको प्रणाम करें, नहीं है तो ऐसे ही हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर दें, हे जगत गुरु कृष्ण आपके लिए नमस्कार है। नहीं आता है, कृष्ण कृष्ण तो कही सकते हैं, राम राम तो कही सकते हैं, ये बिना पैसे की सबसे बड़ी संसार में दवा है, इसको समझ लिया जाए। अजामिल ने मरते समय में नारायण नाम अपने बेटे का नाम था, उसने पुकारा और उसमें विष्णु को दूत आकर के जम के दूतों को मार करके भगा दिया, मृत्यु से उसकी रक्षा हुई। ये हमारे भागवत में ये वर्णन किया गया, और भी बातें हैं, ये सब भागवत में लिखी गई। इसलिए जो अभी नहीं मर रहे मरेंगे, वो अपने घर के कामों को करते हुए जैसे भी गृहस्थ आश्रम में रहें, त्याग आश्रम में रहें, भगवान का नाम करें, भगवान की कथाओं को सुने और भागवत की बातों को रामायण की बातों को स्मरण करें, इससे उनको मृत्यु से साजी में तर जाएंगे। इसलिए आप लोगों के सामने अभी हमने मुखबंद किया, अभी हमारे श्रीमान ब्रह्मचारी जी नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी जी आपको श्रीमद् भागवत की जो उपाख्यान है प्रहलाद महाराज, जो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, उसके संबंध में संक्षेप में कुछ बतला रहे हैं, आप लोग सुनेंगे। इसके बाद में मैं भागवत की दूसरी कथाओं को मैं वर्णन करूंगा। अब तक आप लोगों ने ब्रह्मचारी जी के द्वारा प्रहलाद महाराज जी के उपदेशों को श्रवण किया है। अब मैं आप लोगों को भागवत से कुछ मधुर कथाएं सुना रहा हूं। कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए और जगत पर कृपा करने के लिए अवतार लिया, जगत में आए। देवकी वसुदेव के घर पर कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ, साथ ही गोकुल में नंद और यशोदा के घर में भी आधी रात के समय ही एक बेटा हुआ। वहां वाला जो बेटा था देवकी और वसुदेव के घर में, वो तो चतुर्भुज था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। 16 वर्ष की उसकी उम्र थी, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब, केश लंबे लंबे घुघराले थे, आंखें बड़ी सुंदर थी और समस्त अलंकार उसमें भरे पड़े थे। किसी को ऐसा बेटा 16 वर्ष का नहीं होता है जो हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के पैदा हो, किंतु यहाँ पर ऐसा ही हुआ। और ठीक उसी समय में गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से एक लड़का एक लड़की हुई। लड़का दिव्यश्याम सुंदर, बहुत ही अलबेला खूबसूरत, और उसके बाद ही में एक बेटी और हुई, उसको जोगमाया कहते हैं। ये दोनों एक साथ में हुए। वसुदेव जी उसी लड़के को लेकर के कृष्ण के भगवान के कहने से लेकर के आए गोकुल में, और गोकुल में आते ही 4 भुजा वाला जो कृष्ण था वो 2 भुजा वाले कृष्ण में मिलकर के एक हो गया। इसको कौन देखा? इसको व्यास जी, सुखदेव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी ने देखा, और साधारण लोगों ने नहीं देखा। यशोदा जी ने देखा कि हमको बच्चा तो हुआ, किंतु लड़का हुआ कि लड़की हुई, कि लड़का और लड़की दोनों हुई, ये नहीं देखा, और वो आकर के इसमें मिल गया, ये भी नहीं देखा। अद्भुत बात है। क्यों हुआ ऐसा? भगवान जो नहीं होने वाली बात है उसको भी कर सकते हैं, एक साथ में लाख जगह पैदा हो सकते हैं, लाख रूप धारण कर सकते हैं, साथ ही साथ लाखों काम कर सकते हैं। भगवान ऐसी अद्भुत अचिंत्य शक्ति जिसकी हम चिंता नहीं कर सकते। इसके बाद में गोकुल में बढ़ने लगे। पूतना आई, कंस ने कहा जे बहन, जरा वो वसुदेव जी का लड़का सुनते जो वहां चला गया नंद गोकुल में, इसको मारना है। बोले जी भाई, हमारे रहते तुमको डर होने की जरूरत नहीं, मैं गई और वो मरा समझो? बस सुंदर मैया का वेश बनाया, थी तो बड़ी क्रूर डाइन जैसी थी, बच्चों का भी मांस खाती थी और उनके रुधिर को पान करती थी, रक्त पान करती थी, बड़ी अत्याचारी थी। गोकुल में गई, बड़ी सज धज करके मैया बन करके बड़ी परम सुंदरी बनी और गोकुल में प्रवेश किया। नंद के आंगन में गई, नंद बाबा वहां घर पर नहीं थे, वो मथुरा गए हुए थे कर देने के लिए कंस का, और उस समय पूतना आई, बोली अरे बेटा तू इतना सुंदर, तू मेरा बेटा है, ये तेरी मैया यशोदा इत्यादि तेरी मैया नहीं है, अरे तुमको हृदय से निकाल करके बाहर में रखा है, मैं तुम्हें अपने हृदय में रखूंगी। कृष्ण ने आंख बंद कर दी, उसने अपने स्तन दे दिए और स्तन में कालकूट बीज था, बच्चा तो था नहीं, उसको दूध आता कहां से, कालकूट बीज भर दिया, ये बीज के सूंघने से ही मर जाएगा, पीने की तो बात अलग रहे। उसने अपने हाथ से कृष्ण का सिर पकड़ा और एक हाथ से अपना स्तन से पंप किया जो बीज उसके मुख में जबरदस्ती चली जाए, और ज्यों ही ऐसा किया त्यों ही कृष्ण ने उस बीज को भी पान कर लिया, चूस किया और साथ साथ में उसके प्राणों को भी पी लिया। तू मैया बन करके आई है, अब मैं तुम्हें मैया बना करके ही छोड़ूंगा, ऐसे हमारे पास में जो आ जाता है उसको मैं छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। इसलिए उसके प्राण तक पी गए, उसका शरीर वहीं पर विराट लंबा हो गया। भैया भैया रक्षा करो कह करके चिल्लाने लगी और आकाश में उड़ी, 6 माइल की लंबाई चौड़ाई उसकी थी। कृष्ण ने कहा जी गोकुल से बाहर तुम्हें मैया, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस ऐसे बीच में गिरी, कृष्ण उसका स्तन पीते रहे और उसी पर पारे से खेल रहे और वो बेचारी वहीं पर ढेर होकर के गिरी। कंस का बगीचा था वो सारा टूट फूट करके नष्ट हो गया। पूतना माने क्या? भगवान के भजन में सबसे पहले पवित्र होना चाहिए। पूतना, जो पवित्र नहीं है, जो स्नान नहीं करते, जो सच नहीं बोलते, जो दूसरों से हिंसा द्वेष करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ये लोग अपवित्र होते हैं। पूतना में सब प्रकार की अपवित्रता थी। वो रक्त मांस केवल मछली टछली नहीं, लड़कों का मांस और खून पीती थी, इसीलिए आप समझिए, इसलिए कृष्ण ने उसको मार करके उसके शरीर को हटा दिया। परम सुंदरी दिव्य देवता जैसा शरीर धारण करके गोलोक वैकुंठ में कृष्ण की मैया बन करके पधारी। कृष्ण इतने दयालु हैं, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके मूर्ख लोग दूसरे का भजन क्यों करते हैं? व्यास जी सुखदेव गोस्वामी ने कहा। इसके बाद में उन्होंने शकटासुर को मारा। अरे भाई, रूप लेकर के यदि जाओगे तो वो देख लेगा तो कृष्ण मार डालेगा, इसलिए रूप मत बनाओ, ऐसे ही चलो। वो लक कोई गाड़ी वहां पर रखी थी, उस गाड़ी में प्रवेश कर गया और कृष्ण नीचे पलने के नीचे झूल रहे थे पलने में, और दबा करके मार डालना चाहा, पीस देना चाहा। मैया रसोई काम में लगी हुई थी, कृष्ण ने खेलते हुए ही ऐसे पैरों से जो खेल रहे थे, कभी मुख में अंगुल लगा रहे थे और खेलने से पैर के अंगुली से ठोकर थोड़ी सी लग गई और वो गिर करके मर गया। माने क्या? जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं अपने को बुद्धिमान मानते हैं किंतु कृष्ण का भजन नहीं करते, वो सब ऐसे ही हैं। ये विद्वता रूपी गाड़ी पर रखते हैं, खूब विद्वान हैं, किंतु उस विद्या का कोई भी मूल्य नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को वध कर देते हैं। शास्त्र सब पढ़ लिया और नास्तिक कहते हैं क्या? अभी आप लोगों के भी पास में आएंगे या आते होंगे, राम और कृष्ण विष्णु ये भगवान नहीं है, किसी प्रकार से महापुरुष मान लेते हैं किंतु भगवान नहीं मानते। भगवान का रूप नहीं होता। कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास की तो बड़ा भारी अत्याचार किया, बड़ा कामुक था वो, चीजों को समझ नहीं पाते। राम एक महापुरुष थे, भगवान नहीं थे, भगवान का शरीर नहीं होता। ऐसे युक्तियों से साधारण लोगों के मन को खराब कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? ऐसे गधों को असुरों का वध कर देते हैं। इनकी बात को मान करके नहीं चलना है। जिसका रूप नहीं वो भगवान कैसे हो सकता है? जिसमें कोई शक्ति नहीं वो भगवान कैसे होगा? कल हमने कुछ बतलाया था, दूसरी जगह में हमने बतलाया था, जो भगवान का रूप है, उनका गुण है, वे सर्वशक्तिमान हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, जो नहीं होने का उसको भी पलट करके कर देंगे। इस तरह से बहुत से असुरों को मारा। कृष्ण 3 वर्ष के हो गए। अब वो कुछ घर से बाहर भी चलने लग गए थोड़े। अब उनको रोक रोकना बड़ा भारी कठिन है। तो परब्रह्म समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, किंतु ऐसे बालकों चित्र लीला करते हैं, किसी के घर में चोरी करके मक्खन खा लेते हैं। यदि किसी ने पकड़ लिया घर में, अरे मैया ये तो मेरा घर था, ये मैं समझ करके तुम्हारे घर में आया, ये तो मेरा घर है ना, और तुम हमको पकड़ लिया, मैया मुझे छोड़ दे। एक समय किसी के घर में गए, छोटे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नंगे उसके घर में घुस गए। घुस करके कहा, जैसे कृष्ण जब मक्खन चुराने लगे तो गोपी झट उनके हाथ को पकड़ लिया, आज तुमको मैं दंड दूंगी। और वो मनाती थी, ये हे भगवान, हमारे घर में वो बच्चा कृष्ण कब आकर के चोरी करे मक्खन, और ऊपर से वो इस प्रकार कृष्ण से बातें करने लगी। कृष्ण ने कहा, जी मैया हमने तो मक्खन चुराया नहीं, तो क्या किया, हमारा बछड़ा खो गया, कहीं भाग गया बछड़ा, उसको मैं ढूंढ रहा था, आ तो तेरा बछड़ा हमारे घर में आएगा और ही हमारे गगरी में आएगा, घड़े में आएगा, तो हाँ मैया ये इसी में कूद गया। कहाँ है तेरा बछड़ा? तो मार्बल का छोटा सा बछड़ा बाबा ने खेलने के लिए दिया था उसी में उनने पहले डाल दिया और निकाल कर देखो मैया हमारा बछड़ा इसमें। सब लोग हंसने लगे। एक दिन किसी गोपी ने कृष्ण को पकड़ लिया घर में चोरी करते हुए। बड़ा उनको आनंद लगता है, मजा आता है कृष्ण की जब लीलाएं करते हैं। तो कृष्ण को पकड़ लिया, अंधकार अभी था थोड़ा थोड़ा, जब पकड़ लिया मैया ने तो उनको पकड़ करके चली, आज जसोदा मेरी सखी है उसको दिखलाऊंगी ये चोरी करता है, आज एकदम चोर रंगे हाथे ही पकड़ा गया है, आज पकड़ करके जसोदा जी को दे। वो विश्वास नहीं करती है मेरे बात पर, आज तो विश्वास करना ही होगा। वो ले करके, अरे सखी सखी जरा देखो तुम्हारा लाला हमारे घर में मक्खन की चोरी कर रहा है। अच्छा, अरे हमारा बेटा तभी सो रहा है, तुम्हारे घर में कैसे गया, जरा लाओ तो देखें। लेकर के आई, उसका कपड़ा मुंह का हटाया, देखा ये उसी का बेटा था जो ये कृष्ण नहीं थे, कृष्ण अपने घर में सोए। ये कैसे बात हो गई, गोपी देख करके आश्चर्यचकित हो जाए। इस तरह से अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। एक दिन यशोदा जी ने सोचा जी हमारा लाला ये आज अपने हाथ से ही दधि मंथन करूं, अपने हाथ से दधि मंथन करने लग गई। कृष्ण कितने सुंदर हैं, जो विश्व का कोई भी पशु पक्षी मनुष्य कोई भी स्त्री पुरुष देख ले मोहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है उनके रूप को देखकर। तो उसकी मैया कितनी सुंदरी होगी। सामने घड़ा रखा है दधी का, उसके पास ही में एक खंभा लगा है लकड़ी का, उसमें रस्सी लपेट दी और इधर में जो मंथनी होती है उसमें भी रस्सी लपेट दी और दोनों हाथ से घर 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 कर रही, दधी का मंथन हो रहा है। काफी लंबा चौड़ा वो वैसल है, पात्र है, मथनी भी बड़ी है, यशोदा जी की कमर पतली सी, अद्भुत सुंदरी है। पसीने से पसीने की बूंदें मानो मोती जैसे नीचे लुढ़क रही हो और तन्मय होकर के उस समय में दधि मंथन करती हुई गा रही है। क्या गा रहे हैं, कृष्ण के लीला चरित्रों को ही गायन कर रही बड़े मधुर स्वर से। उनका जो मथनी से जो दधि मंथन की आवाज आती है मानो मृदंग का पिछला भाग है और उनकी चूड़ी जो है सोने की वो करताल जैसी मधुर झनझन रुनझुन आवाज कर रही और तन्मय होकर के गा रही हैं। क्या गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो दुखले संघट तंडुलांश संघंटयंतो मुसलई प्रमुग्धा गायन्ति गोप्य जनितो अनुराग गोविंद दामो गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति। ओखल में मुसल से कूट रही है। आजकल मैं नहीं जानता कि मुसल और ओखल किसे कहते हैं, आज की नई लड़कियां नहीं जानती हूं, पुरानी जानती हो सकती हैं, भारत में ऐसा भी प्रचलन है। ओखल में कोई चीज चावल बनाने के लिए उसको कूटा जाता है, तो गोपियां क्या करती हैं, ओखल में कूट रही हैं और गायन क्या कर रही हैं, गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद। कोई सवेरे उठ करके सुख पक्षी पिंजड़े में रख है, बहुत सुंदर अलबेला सुख, और कहते हैं कि सुख पाठ करो, क्या पाठ करो, गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो। तन्मय होकर के कर रही है, पसीने के बूंदे परिश्रम से मोती की बिंदुओं की भांति नीचे टपक रही है, और भी उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। अंचल सिर से नीचे गिर जाता है, आंखों से आंसुओं की धारा प्रेम में बहने लगती है, और कृष्ण पलंग पर सोया हुआ उठता है। वो कौन पलंग पर सोया? पर ब्रह्मांड का जो पर ब्रह्म है, साक्षात भगवान, ईश्वरों का भी ईश्वर, देवताओं का भी ईश्वर, वो पलंग से उठ करके मैया 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 करने लगा। देखा जी, मैया तो है नहीं, नंग धड़ंग 3 वर्ष का शिशु, आंखों में जसोदा जी ने लंबे काजल कर दिए हैं, वो अपने हथेलियों से इस प्रकार जैसे साधारण बालक करते हैं वैसे करने लग गया। गंगा जमुना का पानी बहने लगा, अर्थात उसके आंखों से जो आंसू और काजल दोनों मिलकर के एकदम यहाँ पर जमुना जी गंगा जी बहने लगी। मैया बोलने ही आ नहीं है, मैया कहाँ गई? थोड़ी देर में पेट के बल से बड़ी मुश्किल से पलंग से उतरा और देखा जी मैया कहाँ? ओ बहुत दूर, वो दधि मंथन कर रही, जोर से चिल्ला ऊं किया, किंतु मैया तो तन्मय होकर के गान कर रही है, उसी क्या लीला का गान कर रही है। फिर और चला थोड़े दूर में, ऐसा मालूम होता है जी गिर जाएगा, जैसे कि घूम की खुमारी में, नींद की खुमारी में बच्चे चलते हैं, अभी चलना भी ठीक से नहीं आया था। जो विश्व का चलाते हैं, भारण पोषण करते हैं, जो गोवर्धन जैसे पर्वत को उखाड़ करके अपनी कनिष्ठ अंगुली पर रख सकते हैं, बड़े बड़े देवताओं का मान मर्दन कर देते हैं, कंस को एक क्षण में ही पछाड़ दिया, अरे पृथ्वी को धारण करके निसिंह उसमें बराह के रूप में, और ये हिरण्यकश्यप को मरा बतलाइए, और वो कृष्ण चलना नहीं जानते हैं, किसी प्रकार से चलते चलते जब निकट में आ गए तो और जोर से रोना आरंभ किया, किंतु मैया तन्मय होकर के दधि मंथन कर, और निकट पहुंच करके मैया का सिर पकड़ लिया केश, और दूसरे हाथ से दधि मंथनी को पकड़ लिया। जो सुधा जी ने देखा जी कौन आ गया, दधि चल कर मंथनी क्यों नहीं चल रही, देखा जी हमारा छोटा लाला कन्हैया, ये आकर के पकड़ लिया, प्रेम से पक गई, दधि मंथन छोड़ दिया और उस बच्चे को गोद में लेकर के बड़ा प्यार से अंचल से ढक दिया और अपना स्तन पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। कृष्ण बड़े ललक के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में इसका आस्वादन करने लगे। थोड़ी देर में ही पासी में दूध रखा था आग पर, उसमें से दूध लुढ़कने लग गया, उफन करके गिरने लगा। मेरी भाषा ठीक समझ में आती है कि नहीं? उफनना, उफनना माने गर्म हो जाने के बाद में दूध उफन करके नीचे गिर जाता है। जसोदा जी ने दूर से देखा, जसोदा जी ने ये मन में सोचा कि ये दूध ये सोच रहा है कि यदि मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो जीवित रहने से लाभ क्या, भक्त लोग ऐसा ही सोचते हैं। यह मनुष्य जीवन भगवान ने दिया, यदि भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, भगवान की आराधना में ये जीवन नहीं लगा तो आग में जल करके मर जाना ही अच्छा है, इसलिए दूध सोच रहा है। जसोदा मैया के स्तन में इतना दूध है जो विश्व ब्रह्मांड को प्लावित कर देंगे, बाढ़ में डुबा देंगे, और इधर में कृष्ण का पेट इतना है जो पृथ्वी कोटि कोटि पृथ्वी उसमें समा जाए, एक एक लोम कूप में तो उनका पता नहीं चले, इतना बड़ा पेट, तो कृष्ण का कभी पेट नहीं भरेगा और उनका दूध कभी भी कम नहीं होगा, ये तो जीवन भर पीते रहेंगे तो हमको कब ये पिएंगे, ऐसा सोच करके दूध अगली में जलने लगा। हमारे नरोत्तम ठाकुर जी ने एक गान गाया, यदि मनुष्य जन्म मिल करके हमारा जीवन बेकार गया, हमने कृष्ण का भजन नहीं किया, विषयों में अपने जीवन को लगा दिया, क्यों मैं जीवित रहा हूं, मुझे जल्दी से जल्दी मर जाना चाहिए, किंतु बड़ी मुश्किल है, आज मृत्यु भी हमें नहीं आ रही, यदि भगवत भजन हुआ तो जीवन सार्थक है, और नहीं तो केवल पाप ही कमाएंगे, अच्छा तो करेंगे नहीं कर्म, दूसरों को ठगेंगे, बेईमानी करेंगे, किसी की निंदा चुगली करेंगे, इससे जीवन और बेकार हो जाए। कुछ लोग अपने को सामाजिक समझते हैं, जो मैंने समाज का ये काम किया, मैंने 1000 अस्पताल बनाया, हमने 100 स्कूल और कॉलेज बनाया। हमारे हिंदुजा कोई हैं इंडिया के, उन्होंने बड़े बड़े अस्पताल बनाए। ये बड़ी समाज सेवा है। क्या समाज सेवा है? कोई डकैत लाखों आदमियों का कत्ल करके उसी में चिकित्सा करा करके वो ठीक होकर का फिर कत्ल करता है, इसका पाप कौन भोगेगा? आज स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं हो करके कैसी कैसी शिक्षाएं होती हैं। एटम बम बनाना सीखता है, लोगों को मारना। आजकल चोरियां क्यों बढ़ रही? स्कूल कॉलेज में ही वो सीखते हैं ये सब। यहां पर सच्ची शिक्षा नहीं, भगवत शिक्षा नहीं होगी, आत्मा की शिक्षा नहीं, वहां पर ये सब बात है। इसलिए जगत में आज इतनी समस्याएं हो रही हैं, इतने जेल हो रहे हैं, कहां कोई सुधार हो रहा है? जेलों से सुधार नहीं होगा। ये सुधार होगा कैसे? यदि समझे कोई ये भगवान है, हम पूरा कर्म करेंगे तो भगवान हमें पीस करके शत्रु बना डालेगा, ऐसा यदि डर होगा तब तो वो इन क्राइमों से बचेगा, अन्यथा नहीं। वो तो जेल जाएगा, फिर आएगा, फिर वैसा ही करेगा, फिर जेल जाएगा, वहां पर बिना परिश्रम के ही भोजन मिलता है। आजकल तो वहां पर फैन भी लग रहे हैं, आजकल उनकी खाने की सुविधा दी जा रही है, तो वो बाहर में क्यों रहेंगे? बाहर में तो काम करना होगा। इसलिए जबकि न्याय होता है उस समय देखता है कि अब मैं बरी हो जाऊंगा, एक चप्पल उठा करके और जज को मारता है, हैं? हमको मारा, अच्छा जाओ तुमको और 5 वर्ष का जेल, बहुत अच्छा भाई, इसी के लिए तो वो किया। इससे चरित्र नहीं सुधरेगा। इसलिए इतने जेल हो करके भी, इतने कानून हो करके भी, ये मोरालिटी और ये सत्यता, प्रेम, ये सब नहीं आता। स्कूल कॉलेज जगत में ऐसे नहीं बने हैं। ये तो हमारी गुरु परंपरा के संत लोग हैं, जो अभी भी कुछ जगत में सत्यता है, कुछ मोरालिटी है, कुछ अच्छी बातें अभी हैं, इनकी शिक्षा स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती। हम लोग बिना पैसे के ही अपना आचरण करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, इसलिए हमारी बातों को लोग सुनते हैं, नहीं तो अब तक जगत का ध्वंस हो जाता। इसलिए यहां पर मैं कह रहा था किस पीछ पे, हाँ, वो दूध जल रहा था, मैं बचूंगा नहीं, अब अपना प्राण छोड़ दूंगा आग में जल कर। यशोदा जी ने कहा जे, नहीं 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 ठहरो, कृष्ण को कहा जे, तुम बैठ, मैं जाती हूं उस दूध की रक्षा करूंगा, पहले उसी दूध को तुमको मक्खन मलाई इत्यादि बना करके खिलाऊंगी, उसको सेवा में लगाऊंगी। ये काम गुरु का है, यशोदा जी गुरु है। गुरु जी अपनी भगवान की सेवा भी छोड़ करके, भजन छोड़ करके दूसरों के उपकार के लिए विश्व में घूमते हैं, नाना तरह के कष्ट पाते हैं। स्वामी जी हमारे जो भक्ति वेदांत स्वामी जी हैं, थे ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जिनको आप लोग जानते हैं, 76 वर्ष के उम्र में, आजकल हमारी उम्र 77 वर्ष की होने जा रही है, इसी उम्र में आज से कितने वर्ष पहले 1968 या किस में 65 में हवाई जहाज से नहीं, मालवाही जहाज से भारत यहाँ पर आए अमेरिका में, और कितने कष्ट से प्रचार किया, हमें बतलाने की जरूरत नहीं है। आज यदि वो नहीं होते तो आपके यहाँ या विश्व में आज जो हरिनाम हो रहा है, हरे कृष्ण, ये भी नहीं होता। जगत का कितना कल्याण किया है हम कल्पना नहीं कर सकते, किंतु बड़े दुख और परिताप का विषय है, आज उनके शिष्य लोग इस सत्य से कुछ भ्रष्ट हो रहे हैं। इसको कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है, इसका पालन नहीं कर रहे, साधु संतों का आदर नहीं करते, और लोगों को छल भी करने में बाज नहीं आते। हम उनके बहुत निकट के रहने वाले हैं स्वामी जी के, 1946 से मैं जानता हूं, उनकी बहुत सेवा की है हमने, उनके लिए सारी पुस्तकें और जितनी विग्रह जो मूर्तियां हैं प्रतिष्ठा के लिए हमने भेजी, हमने उनके लिए करताल मृदंग भेजा, हमने उनकी ऐसी सेवा की है जिस समय इस्कॉन का जन्म नहीं था। 1946 से 54, 55, 56 में उनको संन्यास दिलाया हमने, हमारा नाम भी भक्ति वेदांत नारायण है, उनसे पहले हमारा संन्यास हुआ था, तब हमने उनको संन्यास अपने गुरु जी से दिलवाया। उनको बहुत सेवा की। अभी तक हम उनको अपना शिक्षा गुरु मानते हैं क्योंकि मेरी उम्र उनसे बहुत कम थी। तो यहाँ पर ये मैं बतलाने जा रहा हूँ, इस प्रसंग को छोड़िए, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। अप्रसंग है कि वो कृष्ण को रख करके अवधूत को रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। वहां पर हुआ क्या, कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से मैया का स्तन पकड़ लिया खूब जोर से, जैसे बंदरी का बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है, अपने पैरों से भी पकड़ लिया और मुख से उनका स्तन खूब जोर से ऐसे पकड़ लिया, मन छोड़ेंगे नहीं। यशोदा जी ने बैठ लिया और लेकर के छोड़ा करके बैठा दिया। परब्रह्म जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, आज उनकी एक भी शक्ति नहीं चली, यशोदा मैन जी के एक डपट से उन्होंने लेकर के बैठा दिया। असहाय कृष्ण उनके सामने हो गए, उतना 10,000 हाथियों का बल रखने वाली थी वो कृष्ण के से अपने स्तन को नहीं छुड़ा सकी, नहीं छोड़ा, अंत में मर गई। और यशोदा जी ने क्या किया, पुत्र वात्सल्य से प्रेम से ऐसा किया जो धक्का दिया और बैठ गया। कृष्ण असहाय होकर के बैठ गया, क्रोध से उनका अधर फड़कने लगा, होठ फड़कने लगे, भैया ने हमको अभी पूरा दूध नहीं पिलाया और चली गई, दूध प्यारा है कि मैं प्यारा हूं, हमारे लिए तो दूध होना चाहिए, आज हमें छोड़ करके और वो दूध की रक्षा करने नहीं। भक्तों का यही नियम होता है, भगवान से भी भक्त लोग अधिक प्यारे होते हैं, भगवान की कोई चीज हो वो भगवान से भी भक्तों को अधिक प्यारी होती है, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए यशोदा जी कृष्ण को रख दिया और चली गई, दूध में पानी के छींटे दिए और जब वो ठीक हो गया तो लौट करके जब आई तो देखा जे ये कहाँ गया, नटखट, नटखट गया कहाँ, देखा जो कलश से जिसमें दही मंथन कर रही थी उसमें से सारी दही निकल करके फैल गई है चारों तरफ। गया कहाँ, देखा ये बंदर का बंधु, बंदर जैसा चंचल, ये देखो तो इसको एक पत्थर लेकर जिसे पहले लोढ़ा कहते थे उसमें मसाला इत्यादि पीसते थे उसको लेकर के छोटा सा और नीचे की तरफ में ठोकर से मारा और उसमें गोल छेद हो गया, उसमें से सब निकल, जब वो निकल रहा था तो कृष्ण ऐसे देख रहे हैं, वाह ये तो बहुत अच्छा निकल रहा है। इसके बाद में थोड़ी देर में अपनी भगवत्ता भी भूल गए और यशोदा मैया का डर, मैया आएगी तो मुझे मारेगी, इसलिए उसी के ऊपर में पैर रखते हुए और घर के अंदर में घुस गए, घर से बाहर जाना चाहते थे। इतने में देखा जो ऊपर में मक्खन के वो हड़िया लटक रही, बस उखल औंधी हुई थी, उसके ऊपर में चढ़ करके मक्खन लेकर के कुछ खा रहे हैं, कुछ बंदरों को खिला रहे हैं, कुछ कौओं को खिला रहे हैं। बंदरों को किस लिए खिला रहे, अरे जब मैं राम के रूप में आया तो ये बंदर लोगों ने ही हमारी सहायता की, सीता जी को पता लगाया, मार खाई, कितने मरे, मैंने उनका कुछ दिया नहीं, इसमें खूब मक्खन खिलाऊं, इसलिए जो कुछ खा रहे हैं और कुछ उनको बांट रहे हैं। और कौओं को किस लिए दे रहे हैं, काग भूसुंडी के वंश है, काग भूसुंडी जी भगवान के बड़े भक्त हैं, उनको भी दे रहे। यशोदा मैया ने देखा जी ये घर में घुसा, देखा जी क्या कर रहा है, उन्होंने एक छोटा सा बेंत उठाया और उठा करके कपाट के अंदर में धीरे धीरे बिल्ली के पैर जैसे, बिल्ली का पैर जैसा जानते हैं ना, सूखे हुए पत्ते पर भी बिल्ली चलेगी तो वो चरमर नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं होगी। यशोदा मैया बिल्ली की भांति धीरे धीरे पैर को रख करके बड़ी जल्दी से झट कवाट की ओट में जाकर के खड़ी हो गई, देख रही हैं जब भग न जाए। इतने में जल्दी से लठिया लेकर के उसके पीछे से पकड़ने के लिए ऐसे ही आई, इतने में बंदर वहां से देखे, बंदर इनको देख करके भगे और कौवे भी इधर उधर भगे। कृष्ण ने सोचा जी ये बंदर और कौवे किस लिए भाग रहे हैं, तो जो पीछे देखा अरे ये तो मैया पकड़ ली, बस झट उसमें से कूद करके भागे। उधर भी एक दरवाजा था वो राजमार्ग पर, वहां से लौट करके भागे, अरे देखो ब्रह्मा ये कैसे लीला कर रहा। यशोदा जी भी मुक्तों के मुक्त हैं, सर्वज्ञ होने पर भी भगवान ये कृष्ण हमारा बेटा है ये नहीं समझती, नहीं तो इतना प्यार कैसे होता है। और कृष्ण भी भगवत्ता को भूल गए, सोच रहे कि मैं इनका लाला हूं छोटा, मैया आकर के मारेगी भगे। जो सोदा जी दौड़ी बेंत लेते हुए हाथ में, तू लाला भाग करके कहां जाएगा, आज हमारे गांव वाले जितने हैं गोचारण में चले गए हैं, कोई डर की बात नहीं, और दीपावली का दिन है, मैंने सब नौकरों को भी छुट्टी दे दी है। कृष्ण सोच रहे हैं छुट्टी दे दी है इसलिए आज कोई वहां पर रहेगा नहीं, जो सोदा मैया कही आज कोई गांव में नहीं है, हम डरेंगे नहीं, लज्जा नहीं करेंगे, बस सर पर दौड़ी। कृष्ण दौड़ रहे हैं, जो सोदा मैया यदि उनसे अधिक नहीं दौड़ेंगी तो उनको पकड़ नहीं सकेंगी, किंतु कृष्ण के बराबर दौड़ने वाला विश्व में कोई है? बड़े बड़े जोगी लोग मन के द्वारा भी कृष्ण के चरणों को पकड़ नहीं पाते, लाखों वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा सुखदेव जी और बड़े बड़े सनत सनंदन सनातन इत्यादि शंकर जी भी जिनके चरण कमलों को छू नहीं पाते, आज यशोदा जी छोटी सी गोपी, वो भी स्थूल शरीर, जरा मोटा शरीर है, कमर बड़ी पतली, और साड़ी जैसे आप लोग पहनी है ऐसे साड़ी पहनी हुई, पैर तक लटकती है, किंतु दौड़ी आई। कृष्ण जितने दौड़ रहे हैं उनसे अधिक दौड़ने से उनको पकड़ेंगे नहीं, तो नहीं पकड़ कर सकती। माने क्या, भगवान लोगों पर जो कृपा कर रहा है उससे अधिक यदि भक्तों में कृष्ण के प्रति अनुराग हो, भक्तों के प्रति कृष्ण का अनुराग है और कृष्ण का अनुराग भक्तों के प्रति है, यदि कृष्ण के अनुराग से भक्तों का अनुराग अधिक हुआ तो वो पकड़ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसलिए यशोदा जी दौड़ रही हैं, इनका वात्सल्य कृष्ण पर अधिक है, इसलिए पीछे से दौड़ी, उनका केश का बंधन खुल गया, फूल एक एक करके गिरने लगे। माने फूल कह रहे हैं कि मैया तू ये मत करो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, तुम्हारे साथ में आज कृष्ण को जरूर पकड़ करके दंड देना है। इसलिए मानो फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे हैं और वो चली रही, उन्होंने अपना पेट उठा, अरे लो मारा, जब ही ऐसे किया तो कृष्ण का, अरे मैया मुझे मत मार, वो जरा दूर खड़े हो गए, क्यों नहीं मारू, मैंने क्या दोष किया जो तू मुझे मार रही, अरे तुमने वो दधि का भांड क्यों तोड़ दिया, कलश क्यों तोड़ दिया, मैया तो मैंने तो नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा, अरे मैया तू जो दौड़ करके आ रही थी, तुम्हारे पैर में जो ये सोने का जो कंगन था, यहाँ क्या कहते हैं कड़ूला, ये सोने का कोई पायजेब नहीं, वो पूरा सोने का ही होता है, ठोस होता है, तो उससे लग गया और उसे ये टूट गया, तो वो हंसने लगी, अरे चोर धूर्त, कहे मैया हमारे वंश में तो चोर नहीं, ये तुम्हारे वंश में कोई चोर होगा, हमारे बाबा के वंश में कोई चोर नहीं। तो वो हंसने लगी, फिर दौड़ी पकने फिर भागा। काल जवन जिनको नहीं पकड़ सका काल जवन, जरासंध जिनका पीछा करते करते भी नहीं पकड़ सका, जिनकी परछाई भी नहीं छू सका, और कृष्ण से अधिक तीव्र गति से दौड़ करके और झट उनको पकड़ लिया। अब तो कृष्ण रोने लगे, पकड़ करके घर में ले आई, अभी तुम्हें मारूंगी, कहे मैया मुझे मत मार, कहते हैं ये तो बड़ा ढीठ हो गया है, तुम अभी से चोरी सीख रहा है और अपने घर में भी चोरी करने लग गया और हमसे झूठ बोलता है, चट ठहरो। तो कृष्ण जब खूब रोने लग गए, नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमान जसोदा भियोलु खला धावमानम परामिष्टमत्यं ततोदुत। नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राज रुदंतं हुर्नेत्र जुगमंग म्रियंतं करां भोज जुगमेन शातंक नेत्रं मुहुर्श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवदामो तरंग भक्ति नमामीश्वरं सचिदानंदरूपं लसत्कुंडलं गोकुलधारं। कृष्ण रुदंतम होने बड़ी बड़ी लंबी सांसें लेकर के रो रहे हैं। वहां पर त्रिवली पड़ी हुई है, तीन रेखाएं जैसे शंख में रेखाएं होती हैं, पेट में भी तीन रेखाएं हैं, यह सौंदर्य, और गाल में थोड़ा सा ऐसा पड़ा। अत्यंत अद्भुत सुंदर कृष्ण, रोना भी बड़ा मधुर, चलना भी मधुर, बोलना मधुर, हंसना मधुर, कृष्ण का सभी कुछ मधुर। आज कृष्ण रो रहे हैं, ये भी अच्छा लगता है। हमारे ये स्तुति करने वाले कहते हैं कृष्ण तुम्हारा रोना ही अच्छा लगता है, ये रोनी हुई मूर्ति हमारे अंदर में, हमारे हृदय में ये सदा के लिए बस जाए। हंसना हुआ तो है ही है, किंतु रोने में भी बड़े खूबसूरत हैं कृष्ण। रो रहे हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, मैया मुझे मत मार। यशोदा जी अपने दाहिने हाथ से पकड़ी हुई और लठिया रख बाएं हाथ से पकड़ करके, उनका दाहिना हाथ और बाएं हाथ से कहते मारूं, जब रोने लगते हैं तो छोड़ देते हैं। कहते अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये बांध करके रखूंगी। ओ धोखल में बांधा, बांधने के लिए चेष्टा, सखी जरा रस्सी लाना तो लइयो, तो सखियां हंसने लगी, क्यों बांध रही है, अरे बहुत उम्र होने पर एक बेटा मिला, इतना सुंदर, इतना सुकुमार, इतना सुंदर, और उसको ये मार रही है थोड़ी सी दूध के लिए, मक्खन के लिए, ये उचित नहीं। अरे छोड़ दे सखी, इसे मत मार, नहीं आज इसे शिक्षा देंगी, हमारे गर्भ से उत्पन्न हुआ रहसा हमारे साथ में ऐसी चल करता है, हम इसे शिक्षा देंगी, भविष्य के लिए न कर सके, ब्रह्म को शिक्षा देने के लिए ये गोपी आई, यही प्रेम है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने रस्सियां मंगाई, एक रस्सी ली और उस रस्सी से कृष्ण को बांधना चाहा, किंतु वह रस्सी इतनी लंबी होने पर भी एक बार भी कृष्ण की कमर में पूरी नहीं हुई। कृष्ण की कमर कितनी, बार आठ अंगुल, बस आठ अंगुल की इतनी सी, इसी में आ जाए, और रस्सी कितनी बड़ी गाय को बांधने का, एक बार भी पूरा नहीं हुआ, गांठ लगे कैसे। उन्होंने एक और रस्सी मंगाई, तीसरी रसाई, चौथी, पांचवी, छठी, वो अपने घर की सारी जोड़ती चली गई और एक बार भी पूरा नहीं हुआ। सखियों ने कहा इसके ललाट में बंधन ब्रह्मा ने नहीं लिखा, तू इसको क्या बांधेगी, सब ऐसे दस जन्मों तक बांधने पर नहीं बांध सकी। यशोदा जी मैं तो बांधूंगी, आज कल परसों वर्षों में बांध करके ही पानी पीऊंगी। उन्होंने संकल्प कर लिया, हजारों रस्सियां आई, मीलों रस्सियां लंबी हो गई, अद्भुत व्यापार, वो पूरी नहीं, क्यों नहीं हुई, कृष्ण सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प, जो सोचते हैं वही होता है। उन्होंने कहा जे आज मैया हमें बांध देगी तो बच्चों के साथ में खेल कैसे होगी, गोपियां जो हमारे लिए अपने घरों में हैं, वो सोच रहे हैं जी हमारे घर में मक्खन चुराएगा तो हम उसे पकड़ करके खेलेंगी, ये कैसे होगा, आज गैया दूध नहीं देंगी, जब तक कृष्ण को नहीं देखती तब तक वो दूध ही नहीं देती है, उनके बछड़े हजार आए पैरों से मार करके भगा देती है, इसलिए आज यशोदा मैया मुझे नहीं बांधती। इतने में जोग मैया उनकी शक्ति आकर के ऐसा किया, रस्सी लंबी बढ़ती बढ़ती मीलों लंबी हो गई, कृष्ण की कमर वही आठ अंगुल चौड़ी रही, किंतु वो बंध नहीं सकी, एक बार भी पूरा बंधन नहीं, पसीने के बूंदे टपकने लगे। यशोदा जी का मैया का मुख उदास हो गया, सोचने लगी मेरा बेटे को मैं बांध नहीं सकी, सखियां क्या कहेंगी, अपने बेटे को बांध नहीं सकी। तब विवर्ण उनका मुख लाल हो गया, उन्होंने अपने गृह के जो नारायण जो थे जिनकी पूजा करती थी शालोग्राम की, हे ठाकुर जी मैं अपने बेटे को बांध नहीं सकती, बड़ी लज्जा की बात हो। इतने में कृष्ण ने देखा मैया के मुख में पसीने की बूंदे टपक रही हैं, उसको देख करके कृपया शीश स्वबंधने, मैया का परिश्रम देख करके कृष्ण को दया आ गई, इसको कष्ट हो रहा है, इसलिए झट थोड़े ही में उनके केस बांधने के लिए रेशम की डोरी थी बस उसी से ही बंध गए, और उसी को लेकर के उद्दुखल के भी उदुखल माने ओखल, ओखल के पीछे से बांध दिया जे कृष्णा उसको पकड़ करके खोल ना सके। भगवान को पाने के लिए दो चीजें हैं, या तो कठोर भजन साधन किया जाए, कठोर आप लाख वर्ष तक चेष्टा करेंगे साधन के द्वारा ब्रज का प्रेम जैसे यशोदा जी को था ये नहीं हो सकता, ये तो कृपा से होता है, या तो भक्तों की कृपा हो या भगवान की कृपा हो, किंतु भगवान की तो कृपा सब पर है। फिर एक तो होना चाहिए साधन भजन, और आपके परिश्रम को देख करके साधन भजन को भगवान को दया आ जाए। एकादशी की दिन किसी भक्त ने निर्जला उपवास किया, कहा जो ये भक्त हमारे लिए निर्जला उपवास कर रहा है, द्रवित हो जाएंगे, भगवान उसके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए यशोदा मैया का परिश्रम देखते ही कृष्ण पिघल गए। साधक भक्तों का साधक साधन और तब भगवान की कृपा, दोनों मिल करके भगवान मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। लाख साधन करेंगे भगवान की कृपा नहीं होने से आप उनको नहीं पा सकते, इसलिए दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। इस चीज को और समझिए, रामानुजाचार्य के संप्रदाय में दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी तब हम भगवान को भजन कर लेंगे, सही जाने यही देह जनाई, भगवान की कृपा नहीं होने से लाख साधन करने से भगवान नहीं मिलेंगे, इसलिए साधन करने की जरूरत है, भगवान की कृपा हो जाएगी बस मिल जाएंगे। और दूसरे कहते हैं कि नहीं, भगवान को साधन करना चाहिए, जब तक ये साधन और भगवान की कृपा नहीं मिल जाती तब तक वो व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता, इसलिए दोनों चीज की जरूरत है, हमारा साधन भी जरूरत है गुरु वैष्णव जैसा कहते हैं, और साथ साथ में भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके, बच्चा उसका मेव मेव करता है, वो बच्चे को पकड़ कर लेकर के इधर से उधर जा करके रख देती है, बच्चा कुछ नहीं करता, अपने नहीं चलता, खाना भी अपने नहीं खाएगा, वो कहीं से ला करके खिला देगी। और बंदर क्या करता है, उसकी मैया कुछ नहीं करेगी, कहीं चलना होगा तो बच्चा आकर के उसको पकड़ लेगा ऊपर से या नीचे से, और ये कूद जाएगी उस पेड़ से उस पेड़ पर, यदि वो बच्चा गिर गया तो उस बच्चे को जीवन भर नहीं छुएगी। तो जैसे बिल्ली का बेटा अपना कुछ काम नहीं करता, मैया उसको ले जाती है उधर, ये भगवान की कृपा होगी तब हम भजन करेंगे, ऐसा मत करो। और केवल बंदर जैसा साधन, एक आदमी कुएं में गिर गया, ऊपर से किसी ने दया करके रस्सी लटका दी और बोला जैसे इस रस्सी को पकड़ लो खींच दूंगा तुम बच जाएगा, तो वो पकड़ता नहीं है। वैसे भगवान की कृपा सब पर है, मनुष्य शरीर दिया है, साधुओं का संग दे दिया है, काज हरिनाम करो फिर भी हम यदि नहीं करें तो भगवान की कृपा नहीं होगी, इसलिए रस्सी को पकड़ लो तो भगवान उसको खींच लेंगे। और आप यदि रस्सी नहीं पकड़ते रस्सी लटकाने पर भी, तो ये क्या हुआ, हमने साधन कुछ नहीं किया, इसलिए साधन भी करो, आपको ये साधन को दे करके भगवान को दया आ जाएगी और साथ ही साथ में भगवान आपके वशीभूत हो जाएंगे। ये इसमें से शिक्षा है, ऐसे शिक्षाओं को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। हरि नाम सबसे सहज सरल उपाय है, इसमें पैसा खर्च नहीं होता, दिन में रात में शाम को सवेरे कभी भी भगवान का नाम ले सकते, कोई भी चीज इसके लिए मना नहीं है। आप लोग जानते हैं जहां भी नाम होता है भगवान का वहां पर हनुमान जी पहुंच जाते हैं, जरूर पहुंचे। एक समय एक तेली उसको समय नहीं मिलता था भगवान का नाम करने के लिए, तो नारद जी ने कह दिया जैसे जब टट्टी करने जाते उस समय भी कर लो, तो वह टट्टी करते समय में राम राम कहा, इतने में हनुमान जी आ गए। उन्होंने कहा दोस्त तुम अपवित्र होकर के कर रहे हो, स्नान करके भगवान का नाम करना चाहिए, तुम अपवित्र होकर के कर रहा है। उन्होंने एक लात मारने से रावण गिर गया, कुंभकर्ण गिर गया, मेघनाद गिर गया, उनका पैर की ठोकर सहने की किसी में शक्ति नहीं, इतना बल, और इस तेली का कुछ नहीं हुआ, ये उठ करके घर चला गया। हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ, वंडर उनको हुआ, इस तेली को मारा ये, इसको कुछ नहीं हुआ। जब रामचंद्र जी के पास में गए शाम को, तो रामचंद्र जी कराहते हुए मिले, करा रहे थे आ। हनुमान जी ने पूछा जी वो आ क्यों कर रहे, कहे तुमने मारा हमको एक पैर आज एक लात, और फिर पूछ रहा है प्रभु हमने कब मारा, आपको मैं मार सकता हूँ, तो आज तो तुमने मारा, ये कैसे मारा? अरे तेली जो टट्टी कर रहा था उस समय राम राम कर रहा था, उसको तुमने पैर मारा, तो जहां राम का नाम कृष्ण का नाम है वहीं पर तो मैं हूं, नाम और नामी दोनों एक हैं, अभिन्न है, भगवान का नाम करने से वहां पर साक्षात भगवान आ जाते हैं, इसकी रियलिटी हरिनाम करने पर आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भगवान का नाम भगवान से भी अधिक दयालु है और बहुत शक्ति रखते हैं पापियों को उद्धार करने के। राम और कृष्ण ने दो चार पापियों को उद्धार किया और उनका नाम लाखों लोगों को लाखों युगों तक उद्धार करता रहेगा। इसलिए मैं नाम के साथ में मैं खुद ही था, इसलिए वो लात की चोट हमारे ऊपर में पड़ी, हमारी कर्म टेढ़ी हो गई। हनुमान जी कहा कान पकड़ा जी आज से ऐसा नहीं करूंगा, खाते पीते उठते बैठते जब भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ऐसा करने से ही आप संसार के दुखों से ऊपर उठ जाएंगे। और प्रेम के साथ में करेंगे तो ब्रज में जसोदा इत्यादि जैसे कृष्ण की सेवा करती हैं गोपियां और गोप करते हैं, ऐसी आपको नित्य काल के लिए उनकी सेवा मिल जाएगी और नित्य काल के लिए सुखी और शांति हो जाएंगे। इसमें और भी सब बहुत बातें हैं, आज रात दिन कुछ अधिक हो गया समय, कल हम कुछ इसके संबंध में बतलाएं। आज यहीं पर अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ, एक कीर्तन इसके बाद में आरती करके तब छोड़ें। आप लोग सभी भगवान का नाम करेंगे, बोलो
¡Suscríbete al canal!
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय
Thank you.